नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार है। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमरीका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबूधाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।